करती हैं। और इन कथाओं में वह शक्ति है कि भगवान तक को दे देती हैं, भगवान का प्रेम देती हैं। इसीलिए उदार चरित्र, उदार गोपाल चरित्र, गोपाल उदार चरित्र। भगवान कैसे हैं उनके कुछ विशेषण दे रहे हैं महाराज परीक्षित। भूमा पुरुष स्वच्छंदवर्ती भगवान, एक एक गुण है। ऐसे यहाँ पर समय नहीं है कि इन शब्दों की व्याख्या की जाए लीला कहने के कारण, लेकिन फिर भी हमें समझते चलना चाहिए किसकी लीला है। कालिय दमन ये भूमा पुरुष की लीला है। भूमा का अर्थ होता है परिपूर्ण, सब तरह से पूर्ण। इस संसार में भगवान के अलावा और कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है, किसी भी विषय में पूर्ण नहीं है। न किसी के पास पूर्ण धन है, न पूर्ण बल है, न पूर्ण ज्ञान है, न पूर्ण आयु है। शरीर में कुछ वर्ष रहने के बाद मर जाना पड़ता है। स्मृति शक्ति बिल्कुल नहीं है। अब सारा ज्ञान और सारी स्मृति लोग कंप्यूटर में बंद करते जा रहे हैं, अपना दिमाग खाली होता जा रहा है। हम देखते हैं एक श्लोक भी अगर कहना हो, कोट करना हो, तो बटन दबा करके देखते हैं। मतलब यहाँ स्मृति नहीं है, अब वो कंप्यूटर में सारी शक्ति चली गई। ये तो ज्ञान है, लेकिन ऐसे बुद्धि वाले लोग भी ईश्वर को चैलेंज करते हैं, भूमा पुरुष को, जो अपरिछिन्न है, पूर्ण है सब तरह से, उनको चैलेंज किया करते। भगवान नहीं है तो ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। और धन क्या है, किसी के पास धन इस दुनिया में? एक बॉम्बे भी तो किसी का नहीं है इस समय, है कि नहीं? एक ही नगर अगर होता अपना तो कहा जाता है कि ये धनी व्यक्ति। इस तरह के अनंत लोक हैं, अनंत धन भरा पड़ा है, अप्राकृत जगत, प्राकृत जगत, सब भगवान का है। वो सभी विषय में पूर्ण है और स्वच्छंदवर्ती है। स्व का अर्थ है अपना और छंद माने इच्छा, अपनी इच्छा के अनुसार बर्ताव करते हैं। हम लोग अपनी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग बाध्य हैं प्रकृति द्वारा। प्रकृति क्रियमाणानी गुणे कर्माणी सर्वस्व। हमारा जगना, सोना, खाना, पीना, पलक गिराना, हाथ उठाना, चलना, सोचना, जन्म लेना, मरना, ये सब कुछ दूसरे के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। हम सब जगह परतंत्र हैं, सब जगह परतंत्र हैं। और भगवान स्वच्छंद, जो कुछ करते हैं अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं। तो महाराज परीक्षित के कहने का आशय है कि मैं जानता हूं कि भगवान श्री कृष्ण कालिय के बंधन में आ गए थे, लेकिन अपनी इच्छा से आए, इसलिए मुझे लीला आनंद देती है, इसमें हमें कोई दुख नहीं होता। भाई आप सुनाइए। और भगवत शब्द कह रहे हैं, पहले भगवान शब्द की व्याख्या बहुत बार की जा चुकी है, इसलिए मैं बहुत विस्तार से नहीं कहूंगा। लेकिन भगवान का अर्थ होता है भग से युक्त, और भग कहते हैं छह ऐश्वर्यों को। ऐश्वर्य से समग्र से वीर जस्य जस श्रेय ज्ञान वैराग्य चैव शरणम भग पिंगना। अशेष धन और अशेष बल वीर और अशेष सौंदर्य, अशेष कीर्ति, अशेष वैराग्य, ज्ञान बल, ये सब जिनमें है उसको भगवान कहते हैं। तो उसमें ऐश्वर्य जैसा समग्रस्य वीरजस्य, भगवान के एक, भगवान का एक गुण है, एक ऐश्वर्य है वीरज। वीरज का अर्थ होता है प्रभाव। किसी वस्तु में जो वस्तुगत प्रभाव होता है उसको उस वस्तु का वीरज कहा जाता है। जैसे अमृत है, अमृत में जो अमर करने की शक्ति है उसको अमृत का वीरज कहा जाता है। विष है तो विष में किसी को मार देने की जो शक्ति है उसको उस विष का वीरज कहते हैं, प्रभाव, सहज प्रभाव। तो भगवान एक अद्भुत व्यक्ति है और इनमें अनंत वीरज है, अनंत प्रभाव है, अशेष मात्रा अद्भुत प्रभावशाली व्यक्ति है, जिसे वीरज कहते हैं। मनुष्यों में जो प्रभाव है वो बिल्कुल सीमित है, काल द्वारा सीमित और देश द्वारा सीमित। देश द्वारा सीमित हमारा प्रभाव यह है कि मान लीजिए आप किसी देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो बस उस देश में आपकी कुछ धाक है, वो देश द्वारा सीमित है, स्थान द्वारा, और उस देश से बाहर गए तो कोई पूछता नहीं। मैं एक बार प्रवचन कर रहा था अमेरिका के एक शहर में, तो वहां भारत के एक प्रांत के चीफ मिनिस्टर गए। मैं ऐसे बैठा था, मैं सुनते ही कि चीफ मिनिस्टर आए हैं, मैं खड़ा होने की चेष्टा कर रहा था, तो मंदिर के कुछ लोगों ने कहा, मैं दूसरे मंदिर में प्रवचन कर रहा था, वो लोग कहा नहीं नहीं खड़ा मत होइए, आप खड़ा मत होइए। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे देश के एक राज्य के मुख्यमंत्री आए हैं और मैं खड़ा न हूं। मुझे बड़ा बुरा लग रहा था, क्योंकि उसके पहले मैं एक मुख्यमंत्री से कुछ ऐसे व्यवहार में तीखा हो गया था। मैं खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, वो लोग कहे नहीं नहीं महाराज बैठी 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 बैठी। और वे आए, उनके लिए कोई आसन नहीं, और मैं कहा कि आप कुछ बोलिए, तो वो कहते नहीं प्रवचन तो आप लोग करते, हम लोग तो केवल दर्शन करने आए हैं। बड़े सज्जन थे, लेकिन फिर भी मैं देखा कि वहां पर कुछ भी भावना नहीं है कि ये प्राइम मिनिस्टर हैं या मुख्यमंत्री हैं क्या हैं, सब कुछ भावना नहीं। हमारी जो महत्ता है वो देश द्वारा सीमित है। तो मान लीजिए कोई टेम्पल प्रेसिडेंट है, तो कहाँ का एक कैंपस का है, कुछ दीवालों में उसकी शक्ति बंधी हुई है। इसके बाद अगर वही आदमी यहाँ लोकल ट्रेन में चढ़ कर जाए तो लोग धक्का देकर निकाल भी सकते हैं। तुम जहाँ के प्रेसिडेंट हो वहां के हो, तो हमारी जो शक्ति, हमारा वीर प्रभाव काल द्वारा, देश द्वारा सीमित है। अच्छा, काल द्वारा किस तरह सीमित है? मान लीजिए पंचवर्षीय चुनाव है, एक चुनाव में हम प्राइम मिनिस्टर हो गए और दूसरे में हार गए, तो वहीं पर काल जो है सीमा बना दिया हमारी शक्ति की। तो 5 वर्ष के लिए आप सब कुछ हैं, इसके बाद आप यू आर नथिंग, आप कुछ नहीं। भगवान ऐसे नहीं है, भगवान अनादि काल से हैं, अनंत काल तक हैं। उनका जो कुछ भी प्रभाव है, सौंदर्य है, शक्ति है, ज्ञान है, वो सब एक रस है, वो कभी बदलने वाला नहीं। इसलिए उनको काला काल से अपरिछिन्न, देश से अपरिछिन्न, अपरिछिन्न, परिछिन्न का अर्थ होता है जिसकी कोई सीमा, परिधि। इन भगवान की कोई परिधि नहीं, सीमा नहीं। इसलिए ऐश्वर्य जस समग्र से, वीर जस जस्य, अनंत बल। अब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बता सकता है इस संसार में जिसका सब कुछ अपरिसीम, जिसकी सीमा न हो। कुछ वर्ष के लिए कोई युवक रहता है, कुछ सुंदर रहता है, बाद में जब बुढ़ापा ग्रस लेती है सारा सौंदर्य समाप्त हो जाता है। कुछ ही वर्षों में सौंदर्य क्या देह तक ग्रस लिया जाता है। डेट ऑफ बर्थ अपने से लिखना पड़ता है, लेकिन डेट ऑफ एक्सपायरी दूसरे लोग लिखेंगे हमारे लिए। अभी एक्सपायर हो गए, खत्म हो गया, गाए बजाए ये शान, वो चेयरमैन, यह मैन, वह मैन, सारा समाप्त हो। लेकिन बीच में जब रोब होता है, जवानी होती है, तो की कल्पना लोग कहा करते हैं, ये लोगों की कल्पना इस तरह से कहा करते हैं। तो हमारा सब कुछ है, सीमित है, और यही कारण है कि हम भगवान को जान नहीं पाते, ज्ञान अल्प है। इसीलिए प्रभुपाद जी बहुत सुंदर अनुवाद किए हैं, लेस इंटेलिजेंट, थोड़ी सी बुद्धि है। नहीं, भगवान श्री कृष्ण तो ये गीता में कहते अबुद्धया, उनके पास बुद्धि नाम की कोई चीज ही नहीं है। अबुद्धया, बुद्धि नाम की चीज नहीं है जो भगवान को निराकार कहते हैं। भगवान गीता में उद्घोषणा करते हैं, जो हमको निर्विशेष मानते हैं वे अबुद्ध, बुद्धिहीन। चलो प्रभुपाद जी कुछ बुद्धि उनके पास छोड़ते हैं, वो कहते हैं लेस इंटेलिजेंट। वो खाना कमाना जानते हैं, भगवान के बारे में नहीं जानते, कुछ बुद्धि उनके पास है। स्वल्प मत है, भागवत में कहा गया स्वल्प मत है, बहुत थोड़ी बुद्धि। एक श्लोक में भगवान कहते हैं एतद् ज्ञात्वा बुद्धिमान स्यात् कृत कृत च भारत, 15वां अध्याय गीता में कहा। इस 15वें अध्याय में वर्णित ज्ञान को जो जान जाता है तब वो बुद्धिमान होता है, तब उसके पास रियली बुद्धि आती है और कृत कृत्य जाता है। तो यह बुद्धि बहुत आवश्यक है, श्रीमद् भागवतम सुनने से बुद्धि बढ़ती है, वास्तविक बुद्धि। तो भगवान श्री कृष्ण इस तरह से भूमा पुरुष हैं, भगवान हैं, उनका अतिशय वीर्य है, प्रभाव और सभी विषय। एक साधारण वस्तु में हम देखते हैं कई कई प्रभाव होता है। शंतक मणि का उदाहरण पढ़ते हैं, वो अपने पूर्व 85 किलो सोना उग देता था रोज, और मणि अपने आप में अविकृत रहता था, उसमें कोई घर प्रतिदिन 85 शेर सोना उसके चारों तरफ हो जाता था। एक प्राकृत वस्तु का यह प्रभाव है, फिर भगवान का तो प्रभाव कहना ही नहीं। ये सारा अप्राकृत जगत या प्राकृत जगत भगवान से उत्पन्न हुआ है, लेकिन भगवान फिर भी भगवान, उनमें कोई घटती बढ़ती नहीं है, और सारे जगत को उनके भीतर समवा दिया जाए फिर भी वो उतना ही रहेंगे, और उनके भीतर समवाया नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी सब कुछ उनके भीतर है। भगवान गीता में कहते हैं कि सब कुछ मेरे भीतर है, मैं सबके भीतर हूं। आश्चर्य की बात, मैं सबके भीतर हूं लेकिन सब कुछ मेरे भीतर है, और दूसरी बार कहते हैं कुछ भी मेरे भीतर नहीं है, मैं कहीं नहीं हूं, किसी के भीतर नहीं। अर्जुन चकित हो जाते हैं सुनकर। भगवान कहते हैं पश्च में योगमयेश्वरम, मेरे ऐश्वरम योग को देखो, यही विशेषता है। यदि हम लोग अपनी कार में हैं तो कार हमारे भीतर नहीं है, है ना? ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती है। हम कार में बैठे हैं या इस भवन में बैठे हैं और भवन हमारे भीतर भी है, ऐसा नहीं। लेकिन भगवान कहते हैं मैं जगत के भीतर हूं। जगत भगवान शब्द की व्याख्या में मैं थोड़ी सी बात कह रहा हूं, ये इस तरह का कोई व्यक्ति है, लेकिन दूसरे दृष्टि से विचार कीजिए किस तरह जगत भगवान के भीतर है, ये संभव है? भीतर है परंतु जगत भगवान के भीतर है, ये दोनों सत्य। जैसे हम लोग मन से देखते हैं वहां कार है या रूम है, तो इसका मतलब है कि मन के भीतर वो भवन समाया हुआ है, मन के भीतर सारा जगत अट सकता है। और आत्मा जो है मन से भी सूक्ष्म है, श्रेष्ठ है, और उस आत्मा से भी श्रेष्ठ भगवान है, परमात्मा है। तो परमात्मा के भीतर सारा जगत है, हमारे शरीर के भीतर भवन नहीं है लेकिन हमारे मन के भीतर है, और मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है, आत्मा से श्रेष्ठ परमात्मा है, इसलिए उनके भीतर सब कुछ है, परंतु वे सबके भीतर परमात्मा रूप से है। ये दोनों बात सत्य है, ये कोई असंगत बात नहीं है। लेकिन हम लोग जब देह को सब कुछ मानेंगे तो हमारे भीतर क्या है, क्या हमारे भीतर है, क्या रख सकते हैं? अगर भोजन परोसिए तो बस दो चार रोटी के बाद अब कोई शक्ति नहीं है कि हम भीतर इस जगत को रख सके। आधा सिर चावल नहीं रख पाएंगे और क्या रख सकते। लेकिन भगवान के भीतर कोई भी वस्तु चली गई, समाहित हो गई, आग लगी वृंदावन में साथ, और जंगल में फैली हुई पूरी आग को पी गए, विशाल कई योजन में फैली हुई आग को पी गए। कोई ऐसा व्यक्ति अगर हो जाए तो सरकार के अग्निशामक विभाग में उसको रख दिया जाए, उसको सरकार 1-2 लाख महीने देगी निश्चित महीने में। क्या जरूरत है गाड़ी छकड़ा कहीं आग लगे जाकर पी जाए, यह नहीं कर सकते हैं। लेकिन कृष्ण 2-2 बार आग पिए, दवाग्नि पान की, जंगल की आग, कोई साधारण एक भवन में लगी हुई आग नहीं है, तो आग कुछ भी नहीं है। जंगल में जो आग लगती है जिन लोगों ने देखा है कितना भयानक होते, संसार दावा नल लीढ लोक, संसार दावा नल, जंगल में आग लगती है बहुत भयानक, हजारों वृक्ष जल जाते हैं, बहुत भयानक आग लगती है, हम लोग कभी कभी देखे। तो इस तरह भगवान ने आग पी लिया, तो इनकी भगवत्ता है, ऐसे प्रभु की लीला हम लोग सुन रहे हैं, तो इनकी लीला को सुनने से कौन तृप्त हो सकता है? इस महाराज परीक्षित की जिज्ञासा, भगवान के गुणों की याद करके पूछ रहे हैं। तब सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ करते हैं, कुछ भक्तों की इच्छा है कि बीच में 2-4 मिनट कीर्तन हो जाए, तो तमाल कृष्ण प्रभु कीर्तन गाएंगे 7-8 मिनट, उसके बाद फिर हम चालू करेंगे, सब लोग कीर्तन गाएंगे साथ में। काली दमन की लीला प्रारंभ कर रहे हैं। कालिंद्याम न तो कालिंदी में कश्चिद ह्रद, कोई एक ह्रद था या है, कालिंदी में जमुना में कोई एक हरद है, कश्चिद, कश्चित कहकर समाधान कर रहे हैं, कोई एक हरद है जो वृंदावन में है, वृंदावन में है, जमुना के भीतर वो हरद है और वृंदावन में है। तो वह हरद कालियस्य विषाग्निना, कालिये के विषाग्नि से सप्यमाण पया, खौलता हुआ जल से युक्त है, आसित था। जमुना में एक हरद था जो कालिये नाग के 101 फणों से निकलने वाली विष की ज्वाला से सप्यमाण खौलता रहता था, उसका पानी खौलता रहता था। जैसे हम कोई बहुत बलवान हीटर लगाते हैं किसी बाल्टी में और बाद में पानी गर्म होकर खौलने लगता है, ऐसे पानी खौलता रहता था। और अन्य भी सर्प थे उसके साथ, उनकी ज्वाला भी थी, लेकिन प्रधान रूप से कालियस्य विषाग्निना, कालिये के विष की अग्नि से, उसके मुख से, नासिका से और आंख से विष निकलता था हमेशा, और वह विष आग के रूप में निकलता था। जैसे पानी गर्म हो जाता था, पानी गर्म होने से ऊपर उठता था, इसलिए सारा पानी खौलता रहता था और उसके भीतर वो रह रहा था। कितना पानी खौलता था विष युक्त पानी, ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी झुलस कर उसमें गिर कर मर जाते थे। वो अपने आप में कितना भयानक था। उपरिगा खगा, खगा माने पक्षी, जो ख आकाश में गमन करते हैं, आकाश में चलते हैं, खग कहते हैं। तो खगा जो आकाश में बहुत ऊंचा उड़ने वाले पक्षी भी उसमें झुलस करके गिर जाते, इतना प्रचंड विष था पानी में, इतनी उष्णता थी उस विष के कारण। यह परिचय दे रहे हैं उस सरोवर का, जिसका पानी विष की अग्नि से खौलता रहता था। और विप्रुष्मता विशोदर्वी मारुतेना विमर्शिता, उस विषैले जल में जो तरंगे उठती थी, उन तरंगों को स्पर्श करके जो वायु बहता था, वह वायु जब वहां तट पर चलता था तो वह उस हरद के विषैले जल के सीकर को लेकर के चलता था। किसी सरोवर से जब हवा चलती है तो निश्चित ही उसके सीकर को, बिंदुओं को ग्रहण करती है, तो उसे बिंदु युक्त, सीकर युक्त हवा के अभिमर्शन से, स्पर्श से म्रियंते तीरगाजस्य प्राणिना स्थिर जंगमा। तो तीर पर भी बहुत दूर तक स्थिर या जंगम प्राणी मर जाते थे। स्थिर प्राणी कहते हैं वृक्षों को, वे सब तीर के वृक्ष मर जाते थे। और कोई भी प्राणी जो निकट जाता था केवल हवा लगने से मर जाता था, क्योंकि उस हवा में विषोद की उर्मियों का सीकर रहता था। विषैले पानी की तरंगों को छू करके चलने वाली हवा मार देती थी जीवों को, तो अपने आप में वह जल कितना भयानक और विषैला था, सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। इसीलिए आवश्यकता हो गई थी कि कालिये को वहां से निकाला जाए, इतना भयानक उहरद हो गया था भगवान की लीला भूमि में। तो ऐसे भयानक विष वाले कालिये को भगवान ने देखा और उसके संग से जमुना दूषित हो गई है, तो उसको निकालने के लिए लीला किए। तो दो प्रभाव वर्णन कर रहे हैं, ऊपर उड़ने वाले पक्षी झुलस कर गिर जाते थे और आसपास तीर पर बहुत दूर तक रहने वाले अस्थिर और चलने वाले जीव चर अचर सभी म्रियंते मर जाते थे। वे कैसे मरते थे? हवा के झोंके से, हवा के लगने से मर जाते थे। उस हवा में विष आ रहा था, विष आने से। तो ऐसा कालिये हरद बिगड़ चुका था कालिये के संग से। तो भगवान श्री कृष्ण इस जगत में जब भी अवतार लेते हैं, मत्स्य कुरुम्बारा है आदि कोई भी, तो वे खलों का दमन करते हैं। खल संयमना अवतार, खल खला नाम संयमनाया अवतार जस्य, ख फलों का दमन करते हैं, क्योंकि यह जगत भगवान बनाए हैं, इसलिए बराबर एक निगाह रखते हैं कि संसार कैसे चल रहा है। कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लीजिए हम लोग कोई परिवार बनाए हैं, संस्था बनाए हैं, तो हम लोग देखते रहते हैं कैसे चल रहा है, ठीक से चल रहा है नहीं चल रहा है। तो ईश्वर इस जगत की सृष्टि करके इससे उदासीन नहीं है, वे इसकी देख रेख रखते हैं। और जब देवताओं से स्थिति नहीं सुधरती है, मतलब उनके कंट्रोल से बाहर स्थिति हो जाती है, तब भगवान आते हैं। और उनके सामने कोई भी खल, कोई भी दुष्ट टिक नहीं पाता, उसका वो दमन कर ही देते। लेकिन ब्रह्मा शिव आदि देवता ऐसे हैं कि कभी कभी खल इनको कंट्रोल में रखते हैं, जैसे हिरण्यकश्यप, ये रावण, ये सब देवताओं की शक्ति से बाहर हो जाते हैं, ये लोग कुछ नहीं कर पाते। पुकारते हैं भगवान को कि अब आप आइए, अब आपके बिना अब यहाँ की स्थिति, ये सिचुएशन अब सुधरने वाला नहीं। तब भगवान आते हैं, तो भगवान आते हैं तो उनके साथ उनका स्वरूप है अनंत बल, अनंत ज्ञान, सब कुछ अनंत। तो आ करके किसी भी दुर्दांत खल को शांत कर देते। खल उसे कहते हैं जो स्वयं गड्ढा में जाए और दूसरों को गिरावे, बुरे काम में स्वयं लगा हो और दूसरों को लगावे, दूसरों को तकलीफ दे, खास करके कसाई खाना खोल करके गऊओं को मारने लगे, तो ऐसे खलों को मारने के लिए भगवान आते और वे गोपालन करके दिखाते इस तरह से गऊओं की रक्षा करने से। खल जब दूसरे का मांस खा करके अपना मांस बढ़ाना चाहते हैं, वेद धर्म का उल्लंघन करके दूसरे की स्त्रियों को भोगना चाहते हैं, दूसरे के धन का अपहरण करते हैं, तो ऐसे खलों को संत करने के लिए भगवान आते हैं। बस उनका आना ही काफी होता है। देवता लोग प्रार्थना कर रहे थे गर्भस्तुति, तो माता देवकी से वे लोग कहते हैं कि माँ तुम चिंता मत करो, कंस मर गया ऐसा मानो, भगवान तुम्हारे गर्भ में आ गए, बस वो मर गया ऐसा वे कहते हैं। हम मानते हैं कि पृथ्वी का भार दूर हो गया, केवल भगवान के आने में देर होती है, आने में देर होती है। और भगवान यहाँ आते हैं तो कोई बहुत कमजोर बन करके नहीं आते हैं, भगवान भगवान है, किसी को भी ठीक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान इस संसार में आए और उन्हीं को कोई मार दे, ये आए धर्म की रक्षा करने के लिए, खलों को दंड देने के लिए, और उन्हीं को कोई सूली पर झुला दे, ऐसा नहीं हो सकता है। भगवान भगवान है। जो भी पर धनापहरण और हिंसा, इन तीन को जिन लोगों ने किया, वो भगवान आकर के उनको शांत कर दिया। यद्यपि भगवान किसी के बैरी नहीं है, उनको मार कर अपने धाम में भेज देते हैं, फिर भी यहाँ में दमन करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं खल संयमना अवतार, भगवान का अवतार होता है खलों को कंट्रोल में रखने के लिए, संयम करने के लिए। तो भगवान ने देखा, देख क्या अंड वेग विश्वीरजम, कालिए को उन्होंने देखा, विचार किया कालिए कैसा है, या प्रचंड वेग जिसका है, तेज जिसका है, ऐसे विष से यह युक्त है, यह विष ही इसका वीर्ज है, इसका प्रभाव है, इसके पास इतना भयानक विष है कि इसके बल से पक्षियों को मार रहा है, अस्थिर और चर जीवों का वध कर रहा है, नदी को दुष्ट कर लिया है। भगवान ने विचार किया और तेना नदी च दुष्टा, और उससे कालिए के द्वारा हमारी लीला भूमि जमुना नदी दूषित हो गई है, मतलब विषाक्त हो गई है, नदी विषाक्त हो गई है, और वह खल यहाँ रह रहा है। तो भगवान सोचे कि इसको यहाँ से निकाल देना चाहिए, यह जा करके वे किसी बच्चे से कुछ कहे नहीं, और गोपों से जो सयाने सयाने गोप साथ में थे उनसे भी कुछ नहीं कहे, वे खेल कहे थे, और खेल करते समय ही अकस्मात वे अपनी कमर बने लगे, रसना गाढ़ रसना कहते हैं, रसना कटी वस्त्र, उत्तरीय वस्त्र था, उस उत्तरीय वस्त्र को लेकर कुटी में बांधने लगे, कमर पितामह को कस करके बांध लगे और बंध करके और बहुत ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गए, उसकी उतुंग उसकी ऊंची शाखा पर। सब बच्चे देख रहे हैं और भी गोप सब देख रहे हैं क्या करेगा, क्यों चढ़ रहा है, और बहुत जल्दी जल्दी चढ़े और ऊपर चढ़ करके और दा करके अपनी भुजाओं का स्फोटन किए ऐसे ठोके। परम सुंदर श्री कृष्ण अभी तो बालक किशोर अवस्था है, पवंड अवस्था, ऊपर ठोके और बहुत ऊंचे से उसमें कूदे तालिय ह्रद में, न्यपतत विशोद उस विष उद विष जम कूद गए। भगवान के लिए कोई भय की बात नहीं है, जहां तट पर रहने वाले जीव मर जाते थे, आकाश में उड़ने वाले मर जाते थे, उस विषैले जल में भगवान निर्भय कूद गए। और कूदते समय भगवान ने अपना कुछ बल आविष्कृत किया कालिय को डिस्टर्ब करने के लिए, बहुत आवाज उत्पन्न हो और पानी में बहुत उच्छ्वास करने के लिए, बहुत तरंग उठे और पानी फैले और यह आवाज कालिय के आंखों में जाना चाहिए। सर्प कान नहीं होता है, वो आंखों से सुनते हैं, चक्षु श्रवा कहते हैं सर्प को। भगवान ने सोचा कि उसके पास आवाज जानी चाहिए, कुछ बल आविष्कृत करके कूदे, उसका क्या भाव हुआ सुखदेव को स्वयं बल कर। सर्प हरद पुरुषार निपात बेग संचो विदोरक विशो छोसाम बुरासी। जब भगवान कूदे तो पुरुष सार, सार का होता है बल, पुरुष माने भगवान अपनी भगवत्ता को अपने बल को कुछ प्रकट करके कूदे और इतना जोर से कूदे, वो कूदने की आवाज तकाल सर्पों के कान में पड़ी, लाख में पड़ी। तो कालिय के साथ ही बहुत से सर्प फुकार छोड़ने लगे कूदने पर, नीचे वे थे, वे सब फुकार छोड़ने लगे, विष उगलने लगे और सबके समवेत रूप से विष उगलने के कारण पानी बीच में उठने लगा, खौलने के कारण कुछ दूर तक पूरा खौलने लगा और फा फा उगलने लगे बीस फण फैला। उनको पता नहीं था कि क्या हो गया, कोई पहाड़ गिर गया इसके भीतर कि क्या हो गया, उनको ये पता नहीं था पहले। आवाज बहुत जोर की आई तो वे लोग सब तैयार होकर के बीस उगलने लगे, तो बीच का पानी उठ गया खौल करके, और पहले से खुल रहा था लेकिन उसने भी बहुत ज्यादा खौलने लगा। सर्प के उच्छ्वसित अंबुराशी, अंबुराशी में जल राशि, जल राशि उच्छ्वस बीच में कुछ उठ गई और पर्यक प्लुत, और भगवान इतने जोर से गए थे और इतना बल आविष्कृत करके वो पानी फैला, उस दह का पानी फैला कितना दूर में, चार तरफ 400 हाथ पानी फैल गया, 100 धनुष, एक धनुष 4 हाथ का होता है और एक हाथ लगभग 1.5 फीट होता है। तो सुदेव स्वामी उस समय के पुरुषों के हाथ उसको माप रहे होंगे, हमों के हाथ से नहीं, कलयुग में बहुत लोग होते हैं छोटे छोटे होते हैं बहुत कम लंबाई होती है कलयुग में लोगों, 400 हाथ चारों तरफ पानी फैल, इतना पर्यक प्लुत भीषण में, और विष कषाय विष की काली में जल में हो गई थी इसलिए और भयानक लग रहा था, और विषैली तरंगे चारों तरफ फैल। सर्प मुग्ध हो गई, क्या हो गया है बात, क्या गिर पड़ा ऊपर से कौन चट्टान कौन पहाड़ गिर पड़ा, तो और कोई नहीं आया सामने, लेकिन काली बहुत निर्भय था, उसने सोचा कि कोई जीव गया है जाकर के उसको दस दूंगा मर गए, तो आया बड़े क्रोध में आया, उसने सोचा कि ये हमारे घर का इस दह का बहुत बड़ा अपमान हो रहा है, हमारे रहते हुए और आ करके इसमें कोई इस तरह की हलचल पैदा कर रहे तो ये ठीक नहीं, बहुत क्रोध हो गया। सर्पों को क्रोध बसा कर रहे, वो हमेशा क्रोध में रहते हैं, जो हमेशा क्रोध में रहता है वो क्रोध करे तो कितना भयानक हो ये साधु महात्मा जब क्रोध करते हैं तो उनका क्रोध बस क्षण भर में समाप्त हो जाता है, और क्रोध करते हैं तो कोई बहुत विकराल क्रोध नहीं होता, एक आध तमाचा दिया किसी को शांत हो गया बस इतने से आप्रांत को पहात्मना, महात्माओं का क्रोध है केवल प्रणाम तक रहता है, कोई प्रणाम कर दिया बस शांत कोई क्रोध नहीं। जो दुष्ट होते हैं चाहे प्रणाम कीजिए उनको कुछ भी दिए उनका क्रोध बना रहता है, वो सर्प जैसे है खुद, सर्प स्वभाव से क्रोध रहते हैं। थोड़ा सा यदि आप उनके सामने हो जाइए बस फन काटते, क्यों आ गया क्या हुआ तो वहां तो उसके घर का अभिभव हुआ था, पराभव हो रहा था। तो आतस्य हृदय विहत भुजदंड घूर्ण बार घुसमंग वारण विकमस्य बर वारण विकमस्य आश्रुत तत्व भवनम भवनाभिभवम निरीक्ष चक्षु श्रवा समसर तदमृश्य मार। वो बहुत तेज गति कालिये नीचे से आया, उसका रत्नों का बना हुआ था भीतर, उस कालिये हृदय के भीतर ही वो भवन बनाया था रत्नों का, उसका पूरा परिवार की सैकड़ों पत्नियां रहती थी। और ये नाग है, नाग देवता की जाति माने जाते हैं, बहुत सुंदर रूप बना करके रहते हैं जल, कोई जरूरी नहीं है के रूप में ही रहे, देवी देवता के रूप में भी रहते हैं, लेकिन उनका स्थायी शरीर सर का होता है। तो वह चला समशरत, समशरत कहते कि सम असरत, बहुत तेज गति से चला उस हृदय में डिस्टर्ब करने वाले को दंड देने के लिए। और श्री कृष्ण केवल कूदे ही नहीं, कूद करके जैसे मतवाला हाथी बिहार करे पानी के भीतर, वैसे ही कुछ मुंह से बाजा बजाना कुछ हाथ से जल तरंग जैसा बाजा बजा रहे थे और तैर रहे, तैरना गाना ऐसे कर रहे थे। विष जल का उन पर कोई असर नहीं, वो तो प्राकृत विष जल अप्राकृत भगवान पर क्या असर डालेगा। नैनम छिन्नम के शस्त्राणी नैनम दहति पावक, भगवान पर क्या असर डाल सकते हैं। वे प्रसन्न थे और विहार कर रहे थे और भुजदंड घूर्ण, देखने में उनकी छोटी छोटी भुजाएं थी लेकिन बहुत पर्वत के समान वो पानी तैरते थे, तो साधारण पानी आंदोलित नहीं हो रहा था, बहुत दूर में पानी में बहुत भारी भारी तरंगे उठ जाती थी। इस तरह बहुत हलचल हो गई, डिस्टर्ब हो गया वो हरद। तो ये कर रहे थे उसको सुनाने के लिए, उसको लाने के लिए सामने कि वो आवे, इसी के लिए भगवान कर रहे। वाराणाम घोषम अंग, हे प्रिय परीक्षित, वह आवाज सुन करके तैरना बाजा बजाना जल में आश्रुत्य बहुत अच्छी तरह से सुन करके, वह चक्षु श्रवा आंखों से सुनने वाला जल्दी आया, इसका मतलब वो देख लिया। चक्षु श्रवा का अर्थ है कि देख लिया, सुना बहुत दूर से तो देख भी लिया नीचे से, और आया बहुत जल्दी जल्दी। तो परम सुंदर भगवान को देख करके भी काली के हृदय में द्रोह उत्पन्न हुआ, प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, यह अफसोस करते हुए सुखदेव स्वामी कथा कह रहे हैं कि वो इतना सुंदर लड़का उसमें आया है, इतना खल था कि वो स्वागत सत्कार नहीं किया उल्टे डसने लगा। देने में भगवान बिल्कुल सुकुमार सुंदर थे लेकिन उनका काम उस हृदय को बहुत डिस्टर्ब कर रहा था, उसमें बहुत अंगे रही थी। काली आकर के देखता है कैसा परम सुंदर लड़का, तम देख क्षणीय सुकुमार घनावदातम, श्री कृष्ण का शरीर प्रेक्षणीयश्च सुकुमारश्च घनवत उज्ज्वलश्च, घनवत उज्ज्वल देखने लायक था। प्र इच्छणीय का अर्थ है कि इस जीवन में देखने लायक जो भी वस्तुएं हैं सबसे अधिक सुंदर सुखदेव गोस्वामी की आंख से सुंदर। कालिये की आंख तो दुश्मन है, सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं प्रेक्षणीय और अतिशय सुकुमार कोमल घनावदातम और बादल के समान उज्ज्वल, इसमें कोई मालिन्य नहीं था, शरीर में कोई गंदगी नहीं, वो बादल की तरह स्वच्छ था। जैसे बादल की स्वच्छता नीचे से उतनी नहीं दिखाई देती है, जो लोग एयरप्लेन से घूमे जानते हैं बादलों से जब होकर के प्लेन गुजरता है और नीचे बादल दिखाई देते हैं कितना स्वच्छ रहते हैं, वहां से अनुभव होता है बहुत स्वच्छ, जो कोई गंदगी नहीं, कुछ भी कालिमा नहीं। तो इस तरह से भगवान का दिव्य श्री विग्रह घन घनावदातम घन की तरह उज्ज्वल फ्रेश था। इसको कालिये देख रहा है, श्रीवत्स पीत वसनम और श्रीवत्स श्रीवत लक्ष्मी रेखा को कहते हैं। भगवान के वक्षस्थल पर एक पीली रेखा है जहाँ लक्ष्मी जी रहती हैं। वह भी भगवान के वक्षस्थल पर था और पीला वस्त्र उस सैले जल में विहार करने पर भी स्मित सुंदरास्यम भगवान के सुंदर मुख पर मुस्कान थी, सुंदर मुस्कुराहट थे, मुस्कान रहे थे, स्मित कर रहे थे, अरे और मुख सुंदर लग रहा था, तैर रहे थे पानी में, हंस रहे थे और वो आया क्रीडंतम अप्रतिभयम, भगवान अभय विहार कर रहे थे, क्रीडंतम खेल रहे, कोई भय नहीं था, ये विषैला जल है या इसके भीतर बहुत भयानक सांप है, वो अप्रतिभयम उन्हें कोई भय नहीं था, वो खेल रहे थे। किसी व्यक्ति को पता चले कि इस छोटे से सरोवर को भयानक सांप या कुएं में, कभी उसमें वो विहार करेगा? लेकिन भगवान उस भयानक जलाशय विहार कर रहे थे, तंतम अप्रतिभयम कमलोदरांग्रि, उस समय भगवान के चरणों के दर्शन का सौभाग्य सुखदेव गोस्वामी मिल रहा है। उसके चरण कैसे हैं कृष्ण के? कमल उदर, कमल कोश समान लाल। भगवान जब जमीन पर चलते हैं या बैठते भी हैं उनका चरण दिखाई नहीं पड़ता है बढ़िया, लेकिन जब तैर रहे हैं तो चरण साफ दिखाई पड़ रहे हैं। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कमल उदर अंग्री, कमल का पेट मतलब कमल का भीतरी भाग जितना सुकुमार और लाल होता है, अरुण होता है, वैसा सुंदर चरण कमल था। लेकिन ऐसे सुंदर श्री कृष्ण को देख कर भी कालिए के हृदय में कोई स्नेह अनुराग या दया उत्पन्न हुई, बल्कि वो आ करके तुरंत डस दिया, कई जगह भगवान को डसा। ध्यान रखना चाहिए कि वो डसने से भगवान पर कोई और नहीं हुआ, संदस्य मर्मसु, मर्म स्थान पर डसा, मर्म स्थान अर्थ है जहां डसने से विष जल्दी फैल जाए और ये मर जाए। कालिए जानता था कहां डसना चाहिए, कंठ में डसना चाहिए या मर्म स्थान में, आंखों में, इधर उधर, चारों तरफ डसा। इस अर्थ का स्वभाव डंक मारता है, डसता है, डस करके उसमें विष उगलता है, तो वह विष सारे सर को समाप्त कर देता। तो मर्मसु संदंस्य, खूब अच्छी तरह से दंश किया, और इसके बाद भुजया चछा, अपनी भुजा से मतलब अपने देह से लपेट लिया कृष्ण। शर्त में बहुत ताकत होती है, लपेट लेने के बाद बलवान हाथियों को भी वश में कर लेते हैं, अजगारी लपेट गया कृष्ण को चारों तरफ से डस करके, क्योंकि क्रोध में था और क्रोध में होने से भगवान के सौंदर्य का आस्वादन नहीं किया। यहाँ भगवान के सौंदर्य का वर्णन करके सुखदेव गोस्वामी इसकी दुष्टता को दिखा रहे हैं कि ऐसे पर तो किसी का हृदय बदल जाएगा, कोई इतना सुंदर किसी के घर में आवे तो कुछ एकाध पत्ता तोड़ दे, कुछ डिस्टर्ब भी कर दिया, फिर भी उसको देखने में इतना तन्मय हो जाएगा कि फिर उसका स्वागत करेगा, सत्कार करेगा। लेकिन ये तो इतना बदमाश था कि अपने घर में आए हुए इतने सुंदर के कोई मार देना चाहता, तो भगवान काली के अराध को इस संसार में कट कर चाहते हैं, क्योंकि उनको दंड देना दिखाना चाहते थे कि देखिए कितना खल है, ऐसे सुंदर सुकुमार बच्चे पर उसकी कोई दया नहीं करो। चक्रवर्ती पाजी कहते हैं अपने भक्त को कालिए को भगवान ने अवसर दिया, क्योंकि भगवान के मन में द्रोह नहीं है और जानते हैं कि इसके काटने से हमारा कुछ होगा नहीं। तो कालिए दंशन कर रहा था, जकड़ा था अपनी भुजाओं में, सुखदेव गोस्वामी मानो कालिए पर इस तरह से रोष प्रकट कर रहे हैं। बड़े बड़े मुनियों को यह सौभाग्य मिलता है, बड़े बड़े भक्तों को यह भाग्य नहीं मिलता है कृष्ण को छुए, और उस दुष्ट को मिला सौभाग्य तो भुजाओं में लेकर डसने लगा। भाग्यवान खल था जिसे श्री कृष्ण का संग मिला है। श्री कृष्ण किसी के द्रोही नहीं है, वो सबके पिता है, सबके बंधु है, कालिए पर कृपा कर रहे हैं। और कालिए की पत्नियों ने बाद में कहा है कि हमको पता नहीं चल रहा है कि इसको इस पर आप इतनी कृपा कैसे किए। कस्या अनुभाव सनदेव विद्महे तवांग रेणु स्पर्शाधिकार, आपके शरीर का, आपके चरणों का स्पर्श इसको मिला, हमें पता नहीं है कि इसने कौन सा सुकृत किया था। लक्ष्मी जी को भी ऐसा सौभाग्य नहीं मिला, नाग पत्नियां कह रही थी। जो भी हो, ये कालिए का बहुत बड़ा सौभाग्य था, भगवान के शरीर को पूरा लपेटा था, यहाँ मस्तक से लेकर के पैर तक, हाथ सभी, और कृष्ण कुछ देर तक लगभग 1.5 घंटा तक निश्चेष्ट रहे, चुपचाप पड़े रहे उसके भुजाओं में। संदस्य मर्मसु रुषा भुजया चछाद, तम नाग भोग परिवीत मदृष्ट चेष्टम आलोक्य तत्प्रिय सखा पशुपा भिर्षार्थ कृष्णेर पितात्म सुहृदर्थ कलत्र कामा दुखानुशोक भय मूढ़ धियो निपेतु। जब श्री कृष्ण के सखाओं ने, गोपों ने देखा कि श्री कृष्ण को सांप अपनी भुजाओं में लपेट लिया है, नाग भोग परिवीतम, सर्प के शरीर को भोग कहा जाता है, तो भोग परिवीतम तो सर्प के देह से, सर्प की भुजाओं से लपेटे जा चुके हैं, और उस पर भी गोपों ने ध्यान से देखा तो वो देखे कि अचेष्टम, श्री कृष्ण कोई चेष्टा नहीं कर रहे हैं, मतलब शरीर में कोई चेतना नहीं दिखाई दे रही। तो इसको देखते ही वे हाहाकार करके रोने लगे उनके सखा वृंद, और भी गोप जो थे बड़े बड़े या उस समय जो खेतों में काम कर रहे थे वे देख करके आ गए, क्योंकि बहुत दीर्घ सरोवर था और बहुत दूर से कृष्ण दिखाई दे रहे थे। कृष्ण का शरीर इतना उज्जवल था चमचम कि कोई भी व्यक्ति पहचान गया को तो कृष्ण है, और कृष्ण को सांप ग्रस्त कर लिया है। तो वे देखते ही अतिशय दुख शोक भय से विमुद्ध बुद्धि वाले हो गए, मतलब उनकी बुद्धि मूर्छित हो गई, काम नहीं की, और वे जल के पास ही मूर्छित होकर गिर पड़े। बहुत अधिक दुख हुआ, दुख अनुशोक भय, दुख का यहाँ अर्थ है मन में एक ऐसी पीड़ा हुई, उस मन का असर शरीर पर हुआ और शरीर के रग 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 में पीड़ा होने लगी, वे संभाल नहीं सके अपने को, और अनुशोक बारंबार शोक हो रहा था कि हाय अब हम किसके साथ खेलेंगे, किसके साथ गाय चराएंगे, कौन हमें आनंदित करेगा। कृष्ण ही उनके सब कुछ थे, कृष्ण के बिना सारा जगत शून्य लगने लगा, और भय होने लगा, भय भावी आशंका करके, क्या कृष्ण को सांप डस दिया, कृष्ण कहीं मर ना जाए, हाय हाय, इस तरह से बहुत बड़ा भय मन में उत्पन्न हो रहा था, और इस कारण से बुद्धि काम नहीं की, चेतना शून्य हो गए, मूर्छित होकर के गिर पड़े, निपेतु। यहाँ भी निपेतु शब्द का प्रयोग किया गया, जैसे वृक्ष की मूल काट दी जाए वृक्ष धराशायी हो जाता है, ऐसे सभी गोप वहां गिर गए जमुना के तट पर। और जब वे गिरे उसके पहले कृष्ण पर ही उनकी आंखें लगी हुई थी, और कृष्ण के लिए इन्होंने अपने जीवन का सब कुछ अर्पण कर दिया था। कृष्णे अर्पित सुहृद कृष्णे पितात्म सुहृदर्थ कलत्र कामा, कृष्ण के लिए ही गोपों का देह था या उनके बंधु बांधव भाई भतीजे पुत्र या कलत्र स्त्रियां अर्थ रुपया पैसा और काम। काम का अर्थ होता है कि मनुष्य कुछ कमाई करके इस जीवन में कुछ वस्तु अर्जन करता है इंद्रिय तृप्ति के लिए, और कुछ यज्ञ आदि करके वो परलोक में स्वर्ग चाहता है, इसको काम कहते हैं। दो प्रकार का काम है, एक इस लोक में और परलोक में स्वर्ग में। लेकिन गोपों ने जो कुछ अपने जीवन में कमाई की थी, ये करते थे या शुभ कर्म करते थे, वो सारा फल सब कुछ वो कृष्ण के लिए करते थे, कृष्णे अर्पित कृष्ण के लिए करते थे। और यहां तक कि उनके उनकी जो पत्नियां थी स्त्रियां थी वो सभी कृष्ण के लिए थी। श्रीमद् भागवत में इसका संकेत किया गया है कि गोप कभी भी द्वेष कृष्ण से नहीं करते थे, उनकी स्त्रियां चाहे मातृभाव से कृष्ण की सेवा करें अपना पुत्र मान करके, तो वे कभी भी उन्हें डांटते नहीं थे कि तुम केवल कृष्ण की सेवा करती हो, कृष्ण को मानती हो, तुम हमारी सेवा नहीं करती, अपने बच्चे की सेवा नहीं करती हो, ऐसा कभी नहीं कहते थे। या किसी की नवजोती पत्नी यदि कृष्ण से प्रेम कर रही है तो कोई भी गोप द्वेष बुद्धि नहीं करते थे, असूया नहीं करते थे, ये सभी जानते थे कि ये सारा जगत भगवान नारायण का है और नारायण का आवेश कृष्ण में होता रहता है, कृष्ण परम प्रिय है, इसलिए अगर वो किसी स्त्री से सुखी होते हैं तो वह स्त्री उनको अर्पित है। यह एक बहुत ऊंचा भाव है जिसको सामान्य जगत के लोग नहीं समझ सकते हैं, बहुत पवित्र और ऊंचा भाव है। तो उनकी स्त्रियां, उनके अर्थ, रुपए पैसे और उनका लोक परलोक, उनका देह और उनके सुहृद सब कुछ कृष्ण के लिए थे। और ऐसे कृष्ण को जब उन्होंने संकट में देखा तब उनके लिए अब सुख की बात रह ही नहीं गई। इस संसार में भी देखा जाता है कि कोई व्यक्ति किसी का प्रेम पात्र होता है और वह व्यक्ति यदि संकट में पड़ जाए तो प्रेम करने वाले व्यक्ति को बहुत क्लेश होता है, बहुत दुख होता है। तो गोपों का एकमात्र प्रेम भगवान से था और भगवान इस तरह जब संकट में पड़ गए तब इनके लिए सब तरह से दुख ही दुख था। वे सोचने लगे कि हमारा ये शुभ कर्म किस काम का है, हमारा इकट्ठा हुआ धन किस काम का है, यदि कृष्ण नहीं रहे, कृष्ण नहीं इसको भोगेगा तो हमारा इससे क्या प्रयोजन है, हमें अपने देह से क्या प्रयोजन है, जीवन से ही क्या प्रयोजन है। इस तरह से बहुत बहुत दुख होने लगा, कृष्ण की लीला याद आने लगी, बात याद आने लगी और लगा सब कुछ व्यर्थ है कृष्ण के बिना। और इतना दुख हुआ कि वे गिर गए। इस संसार में भी हम लोग दुख में इस प्रकार की मूर्छा देखते हैं, जैसे दांत लग जाना, किसी बात की संभावना करके शोक करके यहाँ भी आदमी को दांत लग जाते हैं, इसको मूर्छा कहते हैं। कुछ देर के लिए आदमी को होश नहीं रहता है, लेकिन हमारी जो चित्त धारा है, हमारी जो चेतना है, वो केवल प्राकृत वस्तुओं के कारण प्रभावित होती है। किसी वस्तु की कामना करके या किसी व्यक्ति से विरह में हम रोने लगते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, हम सोचते हैं ये वस्तु हमारे पास नहीं रहेगी तो हम कैसे रहेंगे, या व्यक्ति हमको छोड़ देगा तो हमारा काम कैसे चलेगा। ये जो भी है हमारा प्राकृत विचार रहता है, लेकिन ब्रजवासियों का जो विचार है वो केवल कृष्ण के लिए सब कुछ होता है। कृष्ण साथ में है तो सब सुख है, कृष्ण नहीं है तो केवल दुख ही दुख है। तो इसीलिए वे सब गिर पड़े, मूर्छित हो गए। अब किसी भी ब्रजवासी के लिए ये देखेंगे यह सत्य बात है, किसी के लिए भी, सबके घर में पत्नियां थी, सबके घर में बच्चे थे, घर का कुछ सामान था, सब कुछ था, लेकिन कृष्ण के लिए सारा अर्पित था सब कुछ। कृष्ण को जो भी खाना हो वो खाए, कृष्ण के लिए फर्नीचर है, कृष्ण के लिए घर है, कृष्ण के लिए सब कुछ है, देह है, स्त्री, माता पिता, भाई बहन, जो कुछ है हमारे कृष्ण के लिए। ये भगवान के धाम में रहने वाले पार्षदों का विचार। तो कृष्ण अर्पित आत्म सुहृदार्थ कलत्र कामा, बहुत सुंदर श्लोक है। वे तुरंत विचार करने लगे, अब हम किसके लिए कमाएंगे, अब हम क्यों जिएंगे, हमारे जीने का प्रयोजन क्या है। जब कृष्ण को हम इस संकट से नहीं बचा पाए, कृष्ण नहीं जीवित रहेगा तो हमारे लिए कहीं में आ जाए तो यह उसका बहुत बड़ा सौभाग्य है। हम लोग तो इस संसार में किसी वस्तु या व्यक्ति के चलते अपने को धन्य मान लेते हैं, हमें क्या कमी है, कुछ भी कमी नहीं है, ठीक है। कभी कभी हम लोग समाचार पूछते हैं लोगों से, क्या समाचार है, सब ठीक है, किसी बात की कमी नहीं। और बात की व्याख्या करते हैं तो कहते हैं हाँ हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, इसलिए मुझे सुख है। इस अर्थ है कि हमारी चेतनाएं बहुत दूषित है, वस्तुएं तो बिछुड़ी रहती हैं। यहाँ का संबंध है किसी वस्तु या व्यक्ति साथ तो बिछुड़ेगा और हमारे चित्त को आवलित करके जाएगा, दूषित करके जाएगा। कुछ देर के लिए हम किसी को अपना मानते हैं, इसके बाद फिर दूसरे अपना मानने लगते हैं, फिर छोड़ते हैं, इसके बाद देह बीच कर चले जाते हैं। जब तक संसार में है हमारी चित्त वृत्ति पर आंदोलित होती रहती है, एक तरंग से दूसरे तरंग पर जाती रहती है। लेकिन जिनका कृष्ण के साथ संबंध हो जाता है, खास करके उनकी लीला में जो रहते हैं, उनका चित्त केवल कृष्ण के लिए बात। जितने भी गोप सखा थे और भी बड़े बड़े गोप, वो सब मूढ़ धिया, धिया माने बुद्धि, उनकी बुद्धि मूढ़ हो गई, मतलब मूर्छित हो गई, विवेक नष्ट हो गया, उस गिर पड़े। तनिक भी अनुसंधान नहीं रहा कि कृष्ण में नारायण का आवेश होता है, कृष्ण अभी आएंगे, कालिया को मार देंगे, ये सब विचार लुप्त हो गया, अच्छे स्नेह के कारण विचार काम नहीं दिया, वो गिर गए। और सुखदेव गोस्वामी एक शब्द दे रहे हैं, पशुपा, पशु का पालन करने वाले, वैसे देखा गया है कि पशुओं का पालन करने वाले लोग सहज दयालु होते हैं, सहज करुणा होती है उनमें, और पशुओं के साथ भी उनका इतना गाढ़ संबंध होता है कि पशु को सहलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, और कोई अगर बीमार हो जाए तो रोने लगते हैं। ऐसा हमने देखा है, एक पशु बीमार होने पर एक माता जी रो रही थी, और मैं नहाने जा रहा था अपने गांव में, मैं पूछा क्यों रो रही हैं, तो हमारे घर का पहाड़ा बीमार है, पहाड़ा मतलब एक भैंस का बच्चा बीमार, उसके लिए रो रही थी। उसे कितना कोमल हृदय है, एक पशु के प्रति भी इतनी संवेदना। तो एक तरफ पशु है और एक तरफ पशुघ्न है, सही खाना खोल के पशु का वध कर रहे, तो पशु शब्द दे रहे, पशु का पालन करने वाले सब, जब पशुओं के प्रति उनका इतना प्रेम होता है, अगर वह प्रेम भगवान के साथ हो तो कितना गार होगा। जिनका सभी जीवों के प्रति प्रेम है, मनुष्य के प्रति तो छोड़ दीजिए, पशुओं से भी जिनका प्रेम है, वे कितना मान है। अवश्य यह बात कुत्ता के साथ लागू नहीं करनी चाहिए, कुत्ता के साथ प्रेम है तो वो भी बहुत दयालु है, या वो तो बहुत गंदे होते हैं, तो बिल्कुल बुद्धू होते हैं। यहाँ दूसरे पशुओं के लिए बात कही जा रही है, वो कोमल हृदय और तत्प्रिय सखा, कृष्ण जिनको अतिशय प्रिय हैं, या कृष्ण के जो अतिशय प्रिय हैं, कृष्ण को जब देखे कि नाग लपेट ले भुजाओं में, तो पहले तो आर्त हो गए, रोने लगे, पुकारने लगे, दौड़ो दौड़ो बचाओ बचाओ आया, और इसके बाद गिर गए। प्रश्न होगा कि वे क्यों नहीं दौड़े, वे क्यों नहीं दह में जाकर किसको बचाने की चेष्टा किए, तो सब वो स्वामी इसी का उत्तर देंगे, वो तो मूर्छित होकर के गिर गए, चेतना नहीं रही, इसलिए अब हम दौड़े और दह में जाएं, ये साहस कहां से हो सकता है, अब तो ध्यान ही नहीं रहा, वे गिर गए। तो हम लोगों का जो अर्थ है, देह है, काम है, स्त्रियां हैं, हम लोग सोचते हैं ये सब हमारे सुख के लिए है, ये हमारे परिवार के सुख के लिए है, लेकिन यह सबसे उन्नत विचार है। भक्तों को विशेष रूप से सोचना चाहिए कि हमारी पत्नी, हमारा बच्चा, हमारा धन, हमारी कमाई, हमारे लोग परलोक सब कुछ कृष्ण के लिए है। कमाएंगे जरूर, वो गोप भी कमा रहे थे, यहाँ तक कि वे गोरस बेचते भी थे, माखन बेचते थे, कमाते थे, लेकिन वो सारी कमाई कृष्ण के लिए थी। प्रत्येक घर में जो माखन निकाल रहा था वो ऐसी ऊंचाई पर रखा जाता था कृष्ण आएंगे खाएंगे, उनके रखा जाता था, इसका विनोद भी किया जाता था, पकड़ करके वो डांटना, क्यों खाए चोर, क्यों ऐसा किए, क्यों ऐसा किए, तो कृष्ण पैर पकड़ते थे गोपियों को, पैर पर गिरता हूं, मेरी माँ के पास ऐसी शिकायत मत जाने देना, क्यों क्यों ऐसी शिकायत नहीं जाएगी, तो वो कहते थे अगर चोर के रूप में मेरी ख्याति हो जाएगी तो मेरा विवाह होना मुश्किल हो जाएगा, ऐसे वो पैर गिर कर कहते थे, एक तो ऐसे ही मैं काला हूं, उस पर भी अगर स्वभाव भी बदनाम हो जाए तो मेरा विवाह नहीं होएगा। मैया कर दे मेरे ब्याह, मंगाए दे दुल्हिन गोरी सी। ये दिन कृष्ण एकांत में कहने लगे यशोदा से कि माँ मेरा विवाह कर दो, मैं देख रहा हूँ कि मेरा विवाह अब इस ब्रजमंडल में नहीं हो सकता है, क्योंकि सब जगह मैं एक चोर के रूप में बदनाम हो गया। भगवान ऐसे कह रहे थे, मंगाए दे दुल्हिन गोरी सी। और एक सुनो, रात में ही बारात जानी चाहिए, और हमारे जो अतिशय घनिष्ठ मित्र हैं दो चार वही जाना चाहिए, किसी को पता न लगे कि हमारा विवाह निश्चित हो गया, नहीं तो कोई ना कोई काट देगा। हमारा विवाह हो जाना चाहिए, और दाऊ भैया को भी पता नहीं होना चाहिए। क्योंकि दाऊ भैया डांटते रहते थे, तुम चोर हो, बदमाश हो, तुम्हारे चलते बाप का नाम बदनाम हो, करते थे कि तुम तो काले हो, नंद जी गोरे हैं, जसोदा गोरी हैं, तुम काले हो, इसलिए इन हो, तुमको कहीं से खरीद करके लाए हैं, गोरी नंद जसोदा गोरी, चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब सिखाए देत बलबीर, बलबीर इन लोगों का मन बढ़ाता है, वो हिंट करता है कि हंसो हंसो खूब ताली दो, तो बताओ तुम हमको खरीद करके लाई हो, क्या मैं तुम्हारा जन्म हुआ बेटा नहीं हूं। तो माँ कहती है ये बलराम जन्म से ही इस तरह चुगलखोर है, जन्मत ही को धूत, ये जन्म से ही इस तरह का है बेटा, तो ऐसे कभी कभी मजाक किया करते थे। तो भगवान को ब्रज में ये बहुत फिक्र थी कि हमारा विवाह होना चाहिए, और भी नंद महाराज से न कह करके, भैया बलदाऊ से न कह करके, माँ से कहते, माँ से व्यक्ति खुल करके रहता है रास्ता। ये संसार में हम लोग भी देखते हैं, माँ के साथ बच्चा जितना खुल कर रहता है उतना पिता के साथ में, और जन्म भी होता है माँ के पेट से, गोद में भी माँ के रहता है, माँ खिलाती है पिलाती है, पिताजी के साथ बहुत कम संबंध रहता है, कभी कभी संबंध देखा जाता। तो श्री कृष्ण इस तरह कहा करते थे। तो गोपियों के घर का जो माखन था, कुछ भी जो सुविधाजनक वस्तुएं थी, सब कृष्ण के लिए अर्पित थी, और कृष्ण उसे अपना मानकर उपयोग भी करते थे, किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का। तो कृष्णे अर्पित आत्म सुहृदर्थ कलत्र काम, जिन्होंने कृष्ण के लिए अपने जीवन, अपना धन, अपनी पत्नियां, अपनी माताएं, अपने बच्चे, सब कुछ अर्पित कर चुके थे, वे जब देखे कि हमारे जीवन का मूल प्रियतम वस्तु, हमारे जीवन की मूल प्रियतम वस्तु कृष्ण संकट में हो गए हैं, तो अब हम किसके लिए काम करेंगे, किसको सुख देंगे, किसको खिलाएंगे पिलाएंगे, ये सब किसके लिए हम कर रहे हैं, इतना विचार आते ही बस मूर्छित हो गए। इसी को कृष्ण भावना कहते। हम लोग भी सोचते हम किसके लिए कमाएं। ये देखा जाता है कि कोई व्यक्ति विवाह करता है और उसको बेटा नहीं होता है तो कहता हम किसके लिए कमाएं। घर में अपने भाइयों से झगड़ा करता है, कहता हम क्यों कमाएं, हमारे आगे पीछे कौन है, कौन खाएगा, कौन हबेखेगा। भोजपुरी भाषा में इसको कहते हैं, कौन खाएगा, कौन हबेखेगा। तो जो बच्चे वाले हैं वो चिंता करें, हाँ बच्चे वाले सोचते भी हैं कि हाँ भाई हमारी तो जिम्मेवारी है, हमारे बच्चे हैं, हमारी पत्नी है, हमारा घर है, हमको तो काम करना होगा, हमको चलाना होगा। इस तरह देखा जाता है। ब्रजवासी भी गृहस्थ थे, लेकिन वे कभी भी परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपनी पत्नी के लिए काम नहीं किए। यद्यपि सबको कपड़ा लत्ता देना, सुख से रखना करते थे, लेकिन इसलिए कि ये सुख से रहेंगे, ये अच्छा रहेंगे तो कृष्ण को सुख होगा, इनसे कृष्ण के लिए सब कर रहे थे। सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला हुआ है श्लोक बहुत सुंदर है। तो ये तो गोपों की दशा हुई, वो गिर कर मूर्छित हो गए। और जो गौएं थी, गावा ब्रिसा वत्स तरय, गौएं, गौओं के साथ जो बैल थे और छोटे छोटे बछड़े या बाछी, वत्सा कहते हैं उसको, ये सब क्रंदमाना सुदुखिता, कृष्ण को देखे कि सांप ग्रस लिया है तो ये सब जोर से रोने लगे, अपने स्वर में उच्च स्वर से रोने लगे, और कृष्ण पर ही आंखें लगी हुई थी, भयभीत हो गए कि हाय हाय अब कृष्ण का क्या होगा, कृष्ण का जीवन संकट में पड़ गया। और वे तस्थिरे, ये सब खड़ी रही, जड़ता आ गई भय के कारण, अकस्मात आंखों से आंसू भी सूख गए। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं रुदत्य इव, रोती हुई सी खड़ी की खड़ी रह गई, सब कृष्ण पर देख करके। इसको अष्ट सात्विक विकारों में जड़ता कहते हैं, शरीर का स्तंभन हो जाना, ये प्रेम का एक अस्थाई विकार, जड़ता आ गई शरीर में। और एक टक कृष्ण पर देखने लगी, पलकों का गिरना रुक गया पशुओं का, और शरीर का संचालन रुक गया, और रोती हुई सी देखने लगी, और बाद में मूर्छित होकर के तट पर गिर पड़ी। कृष्ण के साथ जो गौएं थी या बछड़े या बाछियां, और उधर ब्रज में क्या हुआ कि ब्रज में नंद आदि गोपों के शरीर में या स्त्रियों के या बच्चों के किसी के भी शरीर में कुछ अपशकुन होने लगा, और बाहर आकाश में भी अपशकुन होने लगा, और पृथ्वी पर भी अपशकुन होने लगा। अथ ब्रजे महोत्पातान त्रिविधा यति दारुणा, अति भयानक अपशकुन होने लगे, तीन प्रकार के, उत्पेतु भूवि दिवि आत्मनि, भूविका अर्थ पृथ्वी पर, पृथ्वी में भूकंप आदि होने लगा, या सियार सियारिन कुछ असमय में बोलने लगे, दिन में ही वे मुख ऊंचा करके कुछ भयानक स्वर करने लगे, कई प्रकार के, या भगवान नारायण के जो मूर्तियां थे उनमें आंसू आने लगे, पसीना आने लगा, नंद बाबा के घर में जो थे इस तरह का अपशकुन होने लगा। तो पृथ्वी पर अपशकुन होने लगा और आकाश से उल्का पात आदि होने लगा, ग्रहों की गति आपस में टकराने लगी और देह में पुरुषों के बाएं अंग फड़कने लगे, बाएं आंख, बाएं हाथ और बाएं जांघ, ये सब फड़कने लगे और स्त्रियों के दाहिने अंग फड़कने लगे। इसको आत्मनि उत्पाता कहा गया है, आत्मा में शरीर में उत्पात होने लगा। और आसन्न भय संसिना, ये सब उत्पात, ये सब अपशकुन निकट ही भविष्य में एक भावी अमंगल की सूचना दे रहे थे कि बहुत अनिष्ट होने वाला है भविष्य में, तत्काल ही कुछ बहुत अनिष्ट होने वाला। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है और लोक में भी प्रसिद्ध है कि इस प्रकार के अपशकुन जब होते हैं तो कोई बहुत बड़ा अनिष्ट होने वाला होता है बहुत जल्दी, इसको आसन्न भय कहते हैं, तत्काल ही कोई बहुत बड़ा भय आने वाला था। तो सबके शरीर में अपशकुन होने लगे और बाहर आकाश में और पृथ्वी पर भी। अति दारुण को ही आसन्न भय संसी कहा गया। संसी का अर्थ है बताने वाले, सूचना देने वाले। इन अपशकुनों से कुछ सूचित हो रहा था, यह वास्तविकता है। दिन में यदि कोई सियार या सियार इन मुख को ऊंचा करके, खास करके पूर्व की ओर मुख करके हमें बोलने लगे तो बहुत अपशकुन होता है। भगवान इस पृथ्वी को छोड़ करके जब चले गए तो उस समय बहुत अपशकुन हो रहे थे और महाराज युधिष्ठिर भीमसेन से बात कर रहे कि देखो भीमसेन, सारी जगत में ऐसा हो रहा है। वे नहीं जानते थे कि भगवान कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर चले गए। सबके बाद वे इस निर्णय पर पहुंचे महाराज युधिष्ठिर, वो कहते मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान के चरण चिन्हों से यह पृथ्वी हीन हो गई, अन्यथा इस प्रकार का उत्पात हो नहीं सकता है। ये सोच रहे थे, उनका मन भयभीत हो रहा था। जब ही अर्जुन के मुख से उन्होंने सुना कि कृष्ण चले गए तो उसी समय में अपना मुकुट उतार कर रख दिए और कहे कि अगर वे चले गए तो अब मैं इस संसार में नहीं रहूं, जब तक कृष्ण थे तब तक मैं राजा था, कृष्ण के बिना मैं नहीं रह सकता, सब कुछ तृण की तरह छोड़ करके चल दिए। और वे जब छोड़ करके चले तो उनके चारों भाई भी चले और परम सुकुमारी महारानी द्रौपदी भी चल दी, साथ छोड़ दी। कृष्ण नहीं है तो फिर हम राज नहीं करेंगे, संसार का कोई भी भोग उनको खींच नहीं पाया, किसी में सुख नहीं देखे, ये था उनका प्रेम। तो उस समय इस तरह के अपशकुन हुए थे, बहुत तरह के, बहुत अपशकुनों को गिनाया गया है वहां। तो ताना लक्ष्य भयो दुग्ना गोपानंद पुरोगमा बिना रामेण गा कृष्णम ज्ञातवाचार्य तुम गतम। उनको उन अपशकुनों को देखकर नंद महाराज अन्य गोपों के साथ बात करने लगे और सब लोग अपने अपने घर से निकले और कहे कि हमारे बाएं अंग फड़क रहे हैं और ये उत्पात हो रहा है, मैं भी देख रहा हूँ क्या हो गया। तो सबका पूर्ण अनुराग, पूर्ण आसक्ति कृष्ण में थी, इसीलिए सब यही शंका किए, एक मन से सभी यही शंका किए, हो ना हो कृष्ण का आज कुछ हो गया। और बाद में श्री नंद बाबा ने देखा कि बलराम यहीं पर है तो उनका उनकी शंका और गाढ़ हो गई, क्योंकि जानते थे कृष्ण की रक्षा करता है बलराम वन में, इसका परम अनुराग है, स्नेह है कृष्ण के साथ, लेकिन ये भी नहीं गया तो अब उनकी शंका और दृढ़ हो रही। इधर अपशकुन हो रहे थे एक जगह नहीं तीन तीन जगह पर और वो भी कई प्रकार से, इधर बलराम जी भी घर पर थे। नंद बाबा और अन्य गोप कहते हैं कि बिना रामेण गाह कृष्णम ज्ञातवाचार्य तुम गतम, बिना बलराम के ही कृष्ण गाय चराने गया है। तो तय दूर निमित्त इन अपशकुनों से निधनम प्राप्तम अतद विदा, वे इसी भावना में विचार में आ गए कि कृष्ण का निधन हो गया। सबको यही शंका हो गई, किसी भी ब्रजवासी को, किसी भी घर में अपने पुत्र के लिए या अन्य किसी बात के लिए उनको कोई चिंता नहीं हुई कि इस अपशकुन का क्या दुष्परिणाम होगा। सब यही सोचते हैं कि ऐसा अपशकुन यही सूचित कर रहा है कि कृष्ण निधनम गतम, कृष्ण का निधन हो गया, कृष्ण समाप्त हो गया। अतद विदा, क्योंकि कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को, प्रभाव को ये लोग जानते नहीं थे,
ये नहीं जानते थे कि वो भगवान है, उनका कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए तत् प्राणा तन मनस्कास्ते दुख शोक भयातुरा। कृष्ण ही उनके जीवन थे और इस कारण से कृष्ण में ही उनका मन 24 घंटे लगा रहता था। कृष्ण के विषय में सोचते थे, कृष्ण ही उनके जीवन थे। इतना विचार आते ही कि हो सकता है कृष्ण का निधन हो गया तो दुख शोक भयातुरा, वे दुख से शोक से भय से व्याकुल होकर और सभी आबाल वृद्ध वनिता बच्चे स्त्रियां और बूढ़े भी सभी घर से निकले, सभी हा कृष्ण रोते हुए इस तरह से क्रंदन करते हुए घर से निकल गए और निकल करके चले कृष्ण को खोजने के लिए। कृष्ण कहाँ है? यहाँ सुखदेव गोस्वामी जो एक आ बाल वृद्ध बनिता, आ माने पर्यंत, युवक सभी रोते हुए तो घर से निकले ही व्याकुल होकर के, एक एक स्त्रियां निकल गई, कोई स्त्री बाकी नहीं रही, कोई बच्चा बाकी नहीं रहा, बच्चे रो रहे थे, स्त्रियां रो रही थी फुटफुट करके, सभी रोते हुए निकले और सबकी हालत कैसी हो रही थी, विवेकहीन जैसे पशु जैसे, कोई बुद्धि काम नहीं कर रही थी, पशु वृत्ति का यह अर्थ है। कृष्ण के विरह में कोई वृत्ति काम नहीं कर रही थी, कोई कहीं रास्ते में गिर पड़ रहा था, कोई किसी के पैर स्लिप कर रहे थे, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, इस तरह सभी रो रहे थे। और निर्जगमुर गोकुला दीना कृष्ण दर्शन लालसा, गोकुल से सभी निकले, सब निकल गए कृष्ण से भेंट करने के लिए। कृष्ण कहाँ है, किस हालत में है, पता नहीं कहाँ है, क्या हुआ, ये सुनते रहते थे कि वन में दैत्य आते रहते हैं, असुर आते रहते हैं, पता नहीं आज कृष्ण का क्या हो गया, बलराम भी यही है, ये सोच करके सब लोग बहुत व्याकुल हो गए और निकल कर कृष्ण की खोज करते हुए चले। यह प्रश्न हो सकता है कि श्री बलराम तो कृष्ण का प्रभाव जानते हैं, वे क्यों नहीं सबको बताए कि नहीं नहीं कृष्ण सेफ हैं, कृष्ण का कुछ नहीं हो सकता है, क्यों नहीं बलराम जी बताए, इतना लोग रो रहे हैं बिलख रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तांस तथा कातरान विक्ष भगवान माधवो बल प्रहस्य किंचिन नो वाच प्रभाव वर्ग्यो अनुजस्य सह। भगवान माधव मधुवंश में उत्पन्न भगवान बलराम अपने अनुज के प्रभाव को जानते थे या उनके प्रकृष्ट भाव को जानते थे, प्रभाव क्या भाव था ये जानते थे। कृष्ण यमुना को शुद्ध करना चाहते हैं, कालिए को निकालना चाहते हैं, इसलिए वे लीला कर रहे हैं, कृष्ण का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, कृष्ण सब तरह से सुरक्षित हैं, ये जानते थे, लेकिन फिर भी प्रहस्य केवल हंस कर रह गए, किंचित न उवाच कुछ कहे नहीं, कुछ भी नहीं बोले। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि बलराम जी सब कुछ जानते थे लेकिन लोगों का रोना बिलखना ये सब देख रहे थे, कुछ भी नहीं बोले बल्कि हंस रहे थे। यह प्रश्न होगा कि ये क्यों हंस रहे थे? बलराम जी इसलिए हंस रहे थे कि इनको देख करके कुछ लोगों को ये समझ में बात आनी चाहिए कि कृष्ण का कुछ नहीं हुआ है। अब शकुन सबके शरीर में हो रहा था, पृथ्वी में हो रहा था, आकाश में हो रहा था, बलराम जी भी ये देख रहे थे अब शकुन, लेकिन वो धैर्य में थे और भगवान ने उनको इस रूप में रखा जिससे उनको देख करके समझा जा सकता है कि कृष्ण सुरक्षित, कृष्ण में और बलराम में भेद नहीं है। इस भाव से अथवा ब्रज में प्रसिद्ध बात थी कि कृष्ण के प्रभाव को बलराम जानता है, इसीलिए बलराम जी और हंस रहे थे, वो खुश थे कि हमको देख करके लोग सांत्वना रखें, लेकिन वो तो हा हुताश करते हुए सब चलने लगे। श्री बलराम जी कुछ कहे नहीं बल्कि उनके साथ भी वो भी गए, इनको जाना जरूरी था, नहीं तो वहां जा करके सभी लोग जमुना के दह में प्रवेश कर जाते और सबकी मृत्यु हो जाती, ये गए वहां रोकने के लिए। तो कैसे कृष्ण के पास से जा रहे हैं ब्रजवासी, तेतत्र तत्राब जो जवान कुशासनी ध्वजोपन्ना पदानि विस्पते मार्गे गवामन्य पदांतरांतरे निरीक्ष माड़ा जयरंग सत्वरा। महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी संतवना दे रहे, हे अंग, हे प्रिय परीक्षित, ब्रजवासियों के दुख को सुनकर चिंता मत करो। तो भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह को देखते हुए लोग गए कि आज कृष्ण घर से निकला है तो कैसे कैसे गया है। गौएं गई थी, गोप सखा गए थे, तो आगे आगे गौएं चल रही थी, इसलिए गौओं से चरण चिन्ह बिगड़ने का कोई प्रश्न नहीं। इन गोप सखा आगे पीछे सब चल रहे थे, तो गोप सखाओं के और गौओं के खुर के बीच बीच में कृष्ण के चरण चिन्ह उभरे रहते। सभी गोप पहचानते थे कृष्ण के चरण में स्पेशल चिन्ह है, उन चिन्हों को लोग देखते हुए जा रहे थे, उसे मिला करके जा रहे थे। प्रश्न होगा कि उतने गोप थे तो चरण चिन्ह सुरक्षित कैसे रह जाता था। यह वर्णन है शास्त्रों में कि वृंदा देवी भगवान के चरण चिन्ह को मिटने नहीं देती थी। यह पृथ्वी एक देवी है, व्यक्ति है, यह अपने देह पर भगवान के चरण को किसी भी तरह से मिटने नहीं देती थी। यहाँ तक कोई बछड़ा या गाय उस पर अपना पैर देती थी फिर भी वो नहीं मिटता था। स्पेशली पृथ्वी की व्यवस्था थी, योग माया व्यवस्था। तो मार्गे गवाम और अन्य पदांतरांतरे, गौओं के और अन्य मतलब गोपों के पद के बीच बीच में भगवान के चरण चिन्ह को देखे हुए लोग जा रहे थे। चरण क्या थे? अब्ज, कमल, जल, अंकुश और वज्र और ध्वज, ये सब चिन्ह कृष्ण के चरण में है। ते हुए बहुत तेज गति से रोते बिलखते हुए जा रहे थे, और जाने के बाद आ रहा दूर से ही इन लोगों ने देखा अंतर हृदय सरोवर के बीच में भुजग भोग परितम कृष्णम, कृष्ण सांप के बंधन में आ गया है। सब लोगों ने जाकर के देखा, तब अलग लोग देखे कृष्ण सांप के बंधन में आ गया है, तो यह देखते ही अतिशय सुख के कारण बुद्धि मूर्छित हो गई और वे सब रोने लगे, हाहाकार कर लगे। पहले हाहाकार किए, इसके बाद बुद्धि मूर्छित हो गई और अंत में परम कसमलम फिर गिर गए, पूर्छा में गिर गए। वहीं तक जो गया वो रोते हुए तट पर गिर गया, अभी जाता था गिर गया। ये सब प्रेम के अनुभव है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति कितना प्रेम है गोपों का, यह इससे पता चल रहा है। हम लोग अपनी स्थिति से मिलान करके देख सकते हैं कि हमारा कितना कम प्रेम या संबंध भी भगवान कृष्ण से। कृष्ण के बिना हम लोग खुश हो जाते हैं, कुछ खाने को अच्छा मिल गया, वाह नाइस प्रसादम, बस प्रसाद में ही भूल गए कृष्ण। या कुछ सोने को मिल गया, कुछ पैसा मिल गया, कुछ भी हो गया, तो बस हम खुश हो जाते हैं। गोपों के लिए तो सब कुछ संसार में था, केवल कृष्ण नहीं थे, है कि नहीं? उनका घर था, उनके बच्चे थे, उनकी गौएं थे, सब कुछ था, लेकिन कृष्ण के बिना सब जीरो था। उनके लिए किसी भी वस्तु में सुख नहीं था। इसकी कल्पना करें ही कि कृष्ण नहीं रहा इस संसार में तो बस मूर्छित पड़े। कृष्ण का कुछ हुआ नहीं है, हो सकता नहीं। भगवान श्री कृष्ण तो कालिए की भुजाओं के आलिंगन का आस्वादन कर रहे थे। ये एक आचार्य सनातन गोस्वामी पाद लिखा है, भगवान कृष्ण वृंदावनवासी अपने भक्त कालिए के शरीर के स्पर्श का सुखानुभव कर रहे थे। वो उनको आनंद आ रहा था, इसीलिए तो डेढ़ घंटा छोड़ दिए। दो घड़ी 45 मिनट एक घड़ी होती, घटी घटी का कहते हैं, तो उस तरह से पड़े रहे। और भगवान का एक स्वभाव है कि अपने प्रेम में, अपने विरह में भक्तों को रुलाना चाहते हैं, क्योंकि रोने से सारा कसाय निकल जाता है। रोना एक मुख्य आइटम है भगवान के भक्ति में। जिस व्यक्ति के आंख में आंसू नहीं आता है भगवान की बातें सुन करके, गा के ले करके, तो उसका हृदय अस्मसार पत्थर सार वज्र का बना हुआ। भागवत में लिखा गया भगवान के गुणों को सुन करके जो रोता नहीं पत्थर का बना है। रोते तो वहीं संसार में अन्य बातों को सोच करके, अन्य भावना करके, तो नहीं भगवान के लिए रह जाए। रोना स्वाभाविक है। इस संसार में भगवान के लिए रोना एक बहुत अच्छी बात है। आज भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते थे मुझे, मुझमें कृष्ण का प्रेम नहीं है, लेकिन मैं अपना सौभाग्य दिखाने के लिए रोता हूँ कि लोग कहें कि ये कृष्ण का भक्त है, किसी तरह से ये पता चले कि ये कृष्ण का भक्त है। अंत ब्रजवासियों को इस तरह से रुलाने के पीछे भगवान का क्या आशय हो सका है? उनका कुछ हुआ नहीं है, आनंद में है, बल्कि कालिक को भी आनंदित करके उद्धार करेंगे, लेकिन फिर भी इस तरह से ब्रजवासियों को लगा। ब्रजवासी जन जब देखे कृष्ण की भुजाओ में, सांप की भुजाओ में कृष्ण और चेष्ट पड़ गए हैं, तो वे लोग भी जा करके गिर गए और सबका सामान्य रूप से वर्णन करके सुखदेव को गोपी जनों का वर्णन करते, वे भी घर से निकली थी, भी गई थी सभी साथ में, आल वृद्ध दीप्त बनिता और बचे सभी गए थे। बचे रो रहे थे, माताएं रो रही थी, गोपियां रो रही थी। जब गोपियों ने देखा कृष्ण को अप्रियतम को सांप से ग्रस्त, तो उन्हें ऐसा लगा कि तीनों लोक शून्य हो गया, शून्य जगत सर्व, जगत में कोई भी वस्तु न देखने लायक रह गई, न सुनने लायक, न सुख सामग्री रह गई, उनके लिए सारा जगत शून्य हो गया। गोप्यों रक्त मनसो भगवत्यनंदे तत्स्मित बिलो गिरा स्मरंत्य ग्रस्ते हिना प्रियतम सदुख तप्ता शून्यम व्यतिहृतम तद सुस्त्र लोक। गोपियों का मन भगवान श्री कृष्ण में ही अनुरक्त रहता, अनुरक्त का अर्थ है अनुराग से युक्त। संस्कृत में अनुराग का अर्थ होता है वह राग जो क्षण क्षण में बढ़ता जाए, उसको अनुराग कहते हैं। और राग का अर्थ क्या होता है? राग का अर्थ होता है जैसे किसी धातु पर, बर्तन पर एक राग चढ़ जाता है, जैसे इस कपड़े पर राग चढ़ा हुआ है। राग मतलब रंग। चित पर ऐसी कृष्ण भावना चढ़ाना जो कभी उतरे नहीं, कृष्ण ही मन में रहे, वाणी में रहे, कृष्ण की लालसा हो, कृष्ण के अलावा कोई भी चरण आवे, तो भक्त की स्थिति को राग कहते हैं, उसके अलावा कुछ न सुहाए। और यह राग अबे कारण के उपस्थित होने पर भी ध्वस्त नहीं होता है, कभी फीका नहीं होता है, भले लोक विरोध करे या कोई राजनैतिक विघटन हो जाए, शरीर में रोग हो जाए, बंधु बांधव छोड़ दे, कुछ भी करे, लेकिन जब वह राग निरंतर बढ़ता जाता है तो उसको अनुराग कहते हैं। यह अनुरक्त शब्द का अर्थ है कि वह अनुरागवती थी। गोपियों का प्रेम भगवान के प्रति नित्य बढ़ता जाता था, वो घटने वाला नहीं था, नित्य बढ़ रहा था, क्योंकि भगवान अनंत है, उनकी वैचित्र्य, उनका सौंदर्य, माधुर्य, उनकी लीला अनंत है। अनंत प्रकार से गोपियों के चित्त को खींचते थे, अरे भगवान है परम सुंदर। तो गोपियों को भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी बातें की चितवन, उनकी मुस्कान की याद आने लगी। मन प्रियतम किस तरह बोलते हैं, किस तरह देखते हैं, किस तरह मुस्कुराते हैं, किस तरह बात करते हैं, अब उनके बिना हम कैसे रहेंगी, कैसे जिएंगी, कैसे रहेंगी, यह सोचते ही वे भी मूर्छित हो गई। मूर्छा सबको आई और सुखदेव गोस्वामी एक विशेष शब्द कार्य शून्यम प्रिय व्यतिहितम ददशुष त्रिलोकम, त्रिलोकम शून्यम ददृशु। इस संसार में देखा जाता है कि कोई व्यक्ति किसी के विरह में हो जाता है तो उसको दूसरे लोग सांत्वना देते हैं, कुछ चिंता मत करो, मैं हूं, मैं तुम्हें सहारा दूंगा, तुम्हारे और भी बंधु बांधव हैं, और लोग हैं, तुम्हारे और परिजन हैं, स्वजन है। प्रकट रूप से गोपियों के भगवान कृष्ण कुछ नहीं लगते थे, कोई सामाजिक संबंध नहीं था, कोई नाता नहीं था, बल्कि वे कृष्ण से जो भी प्रेम कर रही थी तो समाज के विरुद्ध है, समाज का भी सैंक्शन नहीं किया था, फिर भी उनका प्रेम लोक वेद बंधन को छोड़ करके निरंतर बढ़ रहा था, निरंतर बढ़ रहा था। तो उनके लिए न अपना पति कुछ विचार में आया आ रहा था कभी भी, भाई कृष्ण नहीं रहेंगे तो इससे क्या, हमारे पति हैं, हमारे और भी स्वजन, हम सुख से रहेंगे, गोपियां कभी नहीं सोची। उनके लिए अपना अपना पति रहा, न परलोक रहा, स्वर्ग में भी उनको भेज करके सुखी नहीं किया जा सकता था किसी भी तरह से। उनको ऐसा लगा कि कृष्ण जब नहीं है तो संसार में अब कोई नहीं, सारा संसार शून्य, न घर सुख देने वाला रहा, न अपना जन सुख देने वाला रहा, न अपना देह, न विचार, कुछ नहीं। इस संसार में तो हम लोग ऐसे हैं कि चाहे कोई घटना हो जाए, कुछ भी हो जाए, मन को सांत्वना देते हैं। कुछ कोई बात नहीं, हमारा ये आदमी है, हमारे वो आदमी, हमारे इतने जन है, हमारे ये है, वो है, वो है। हम लोग संतुष्ट हो जाते हैं। गोपियां ऐसे नहीं, कृष्ण के बिना सब कुछ शून्य। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, शून्य इतम जगत सर्वम गोविंद विरहेणम। गोविंद के विरह में हमारे लिए शून्य इतम जगत सर्वम, सब कुछ शून्य है। मैं किस वस्तु से सुख मानूं? कोई वस्तु काल के समान है। गोपियों के लिए जब कृष्ण का विरह होता था तो उनके लिए वही कुंज के भीतर वे कृष्ण के साथ बैठी होती थी, वह कुंज उनके लिए नरक जैसा दिखाई पड़ता था। वे ही कुंज पुंज जिन तने तन बाढ़ उद्धव जी से कहते हैं कि उद्धव एक काम करो, उग्रसेन जी से कह करके वृंदावन के सभी कुंजों को कटवा दो, नहीं तो ये जब तक है तब तक हमें कृष्ण की याद आती रहती है और हमें ये बहुत बुरी लगती है। कुंज जिन कुंजों में प्रियतम के साथ रही, अब उन कुंजों को देख करके केवल शोक छाता है। गिरिराज जी को देख करके केवल शोक मन समा रहा है। नंद बाबा भी कहे, उद्धव जसोदा भी कहती, इन सब दृश्यों को हम देखते हैं तो हमारा मन केवल दुख से भर रहा। इस प्रकार कृष्ण से ही सब सुख है और कृष्ण के बिना कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति सुख नहीं रह सकता। यह भाव अर्जनीय है, यही है पंचम पुरुषार्थ। यह पुरुषार्थ हमारे जीवन में कमाने लगे कृष्ण प्रीति ही। स्थान स्थान पर भागवत में श्रील सुखदेव स्वामी ने गोपी जनों के इस प्रेम को दिखाया है। ऐसा प्रेम होना चाहिए। ग्रस्ते अहिना प्रियतमे, उन्होंने देखा कि प्रियतम को सांप ने ग्रस लिया है। तो प्रत्येक गोपी यही सोच रही थी कि अब हमारे प्रियतम को सांप डस दिया और उनमें जहर फैल गया उनके शरीर में और निश्चेष्ट हो गए, मतलब प्राण उनमें नहीं। अब हम क्यों जिएंगे, किस लिए जिएंगे, कौन सा सुख भोगने के लिए? गौतम दास ठाकुर का पद है, केना वाया छय प्राण किसु खला गिया, नरोत्तम दासक नागेल मरिया। मेरे प्राण क्यों मेरे शरीर में है, किस सुख के लिए? अब क्या मैं भोगूंगा, अब क्या मुझे सुख मिलेगा? तो इस प्रकार यह प्रेम की दशा होती है। गोपियों के आंखों में कितना आंसू बह रहा है या उनके सुख